मंगलकरण वीतराग विद्यासागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुन्ना मुनि संघ की।
अपन लोग सोलह कारण भावना में एक एक भावना भी अपने आप में पर्याप्त है, पर सभी भावनाओं के साथ में दर्शन विशुद्धि भावना होना अनिवार्य है। जैसे अपन को प्रश्नोत्तर पूछते ना कि पहला वाला प्रश्न जरूर से करना है, बाकी उसमें से कोई भी कर लो, ऐसे जो है सोलह कारण भावनाओं में से पहली दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य है, बाकी पंद्रह भावनाओं में कोई भी एक भावना हो तब उससे भी तीर्थंकर प्रकृति जीव को अर्जित हो जाती है। बहुत कम जगहों पर ऐसा लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति अर्जित की जाती ऐसा लिखा है। पुण्य का बंद होता है ऐसा बहुत कम ग्रंथों में लिखा, बाद के शुरू के आचार्यों ने पुण्य अर्जित किया जाता है ऐसा लिखा है। पाप का बंद होता है, पुण्य अर्जित किया जाता है। तो उसी तरह अपन देखें तो तीर्थंकर प्रकृति अत्यंत सारी प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है नाम कर्म की, उसका हम अर्जन करते हैं। कैसे अर्जन करेंगे? तो दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं के द्वारा उसका अर्जन होता है। परिणामों की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है, और उसके बाद विनय संपन्नता, सील और व्रतों के प्रति अनतिचार अर्थात निर्दोष वृत्ति होना, अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अवीक्ष्ण संवेग, सत्य तस्त्याग, सत्य तस्तप, साधु समाधि, वैयाव्रतकरण, अरहत, आचारी और उपाध्याय या बहुश्रुतवान, और प्रवचन भक्ति हैं। ये सारी चीजें प्रवचन भक्तिर आवश्यक अपरिहानिर मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व, ये सोलह कारण भावनाएं हैं। अपन पंद्रह के बारे में विचार कर चुके हैं। अब काम इतना शेष रह गया है कि हम उनकी भावना भाना शुरू करें। जो पंद्रह पर हमने विचार किया उनकी हम भावना भाएं। ये सबका अपना अपना विचार तो सामूहिक किया जा सकता है, लेकिन आचरण तो सामूहिक नहीं किया जा सकता। आचरण तो इंडिविजुअल है, बहुत वैयक्तिक है। जो जब शुरू करना चाहे वो अपने जीवन में उसको शुरू कर सकता है। आज मैं इसलिए इस बात को मुझे कहना पड़ा क्योंकि आचार्यों की वाणी में मैं कल देख रहा था कि आखिरी भावना के बारे में क्या लिखा है, तो वो कहते हैं कि जितनी महत्वपूर्ण दर्शन विशुद्धि भावना है उतनी ही महत्वपूर्ण प्रवचन वत्सलत्व भावना, आखिरी वाली भावना। प्रवचन वत्सलत्व किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि वत्से धेनुवत सधर्मिणः स्नेहा प्रवचन वत्सलत्व, जैसे कि गाय का अपने बछड़े पर निस्वार्थ प्रेम होता है, ऐसा अपने साधर्मी जनों के प्रति प्रेम होना, इसको बोलते हैं प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन के मायने हैं धर्म, और धर्मी जनों पर जो हमारे साधर्मी हैं उनके प्रति हमारे मन में जो स्नेह है उसका नाम ही प्रवचन वत्सलत्व है। इस प्रवचन वत्सलत्व के द्वारा भी तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है। समान आचार विचार वाले दोनों चीजें आ गईं, आचार भी और विचार भी, एक जैसी मान्यता है, एक जैसा रहन सहन है, ऐसे लोगों के साथ प्रेम सहज होता। जैसे भैया आप भी वीतरागी भगवान को मानते हैं, वीतरागी गुरुओं को मानते हैं, अहिंसा को धर्म मानते हैं, आप हमारे साधर्मी हैं। हाँ, जो इस तरह से वीतरागी देव, वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु और धर्म दया जुत सारो, इसको बोलेंगे साधर्मी, जिसके हमारे जैसे ही विचार हैं, हमारे जैसा ही आचरण है, आचरण जो कि व्यसन से मुक्त है, आचरण वही श्रेष्ठ है जो कि व्यसन से मुक्त है। ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में और स्नेह का भाव होना चाहिए। अब स्नेह अलग अलग प्रकार से, अकेला स्नेह शब्द कह दिया तो कल हम सोचते रहे कि स्नेह शब्द से क्या अर्थ लेना, तो फिर आचार्य महाराज उसमें बहुत व्यापक अर्थ ले रहे हैं। स्नेह के मायने हैं उचित व्यवहार करना। एक चीज देखो, बहुत बड़ी चीज है ये, हमारा जिनके प्रति स्नेह होता है उनसे कभी हम अनुचित व्यवहार नहीं करते। तो उसका मतलब है कि जिसके जो हमारे साधर्मी है उनसे उचित व्यवहार करना। अब अपन देख लें गौर से कि अपना व्यवहार उचित होता है या कि अनुचित होता है। होता तो अनुचित ही है, और उसका कारण क्या है? ईर्ष्या। समान वाले के साथ उचित व्यवहार होना बहुत कठिन है। अपने से बड़े लोगों के प्रति आदर का भाव आ जाएगा, अपने से नीचे वालों के प्रति दया का भाव आ जाएगा, अपने समान वालों के प्रति उचित भाव नहीं आएगा, ईर्ष्या का भाव आएगा। राजा की सवारी निकली और झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था, सो जैसे ही मालूम पड़ा कि राजा की सवारी आ रही है, हाथ जोड़ के रास्ते में खड़ा हो गया। वो राजा की शाही ड्रेस देख करके प्रशंसा करने लगा कि वाह वाह क्या ड्रेस पहने राजा साहब, हीरे मोती जड़े हुए हैं, इतनी बढ़िया इनकी पोशाक ही इतनी सुंदर है। और राजा की सवारी निकल गई। उसके बाद अचानक उसका ध्यान गया, एक और झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था, वो जरा साफ सुथरे धुवे लूहा करे कपड़े पहने था, प्रेस किए हुए हैं। उसको देख कर कहने, आज तो कारात है, बड़े बने ठने घूम रहे हो। अब बताओ आप, राजा शाही ड्रेस पहन के निकल गया तो राजा की ड्रेस देख करके कोई ईर्ष्या नहीं हुई बल्कि प्रशंसा हुई, लेकिन चूंकि मेरे साथ वाले मेरे जैसे ही काम करने वाला और वो अगर अच्छे कपड़े पहने तो बड़ी तकलीफ होती है। राजा के साथ तो आपने जो व्यवहार किया वो उचित था, लेकिन क्या अपने आप साधर्मी के साथ आपने जो व्यवहार किया उससे इस तरह के कड़े वचन बोले, उससे ईर्ष्या करी, क्या ये हमारा व्यवहार उचित है? बस ये विचार हमें करना चाहिए। उचित अपन सोचते हैं स्नेह तो है हमारा, स्नेह होगा तो व्यवहार उचित होगा। दुकान पर पहुंच गया कोई, हमारा साधर्मी है, आओ भैया, इतना नहीं कहते अपन, क्या आपकी सेवा करूं? उसे हम जो भी चीज देंगे हिसाब से देंगे, उसके साथ उचित व्यवहार। दुनिया भर के साथ हो सकता है कि हम उचित व्यवहार ना करते हो, लेकिन अपने साधर्मी के प्रति तो उचित। और अगर बहुत व्यापक रूप से देखा जाए तो साधर्मी कौन है? जो मनुष्य है उसका साधर्मी कौन है? मनुष्य। हाँ, ऐसा अगर व्यापक ले लिया जाए, आप ऐसा नहीं सोचना कि जैनी आदमी है तो जैनी के साथ, वैष्णव है तो वैष्णव के साथ, हिंदू है तो हिंदू, मुसलमान है तो मुसलमान, क्योंकि वो उसका साधर्मी हो गया। नहीं, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, जो वितरागता में विश्वास रखता है, वो हमारा साधर्मी है। जो व्यसन नहीं करता वो हमारा साधर्मी है। उसके साथ हमें उचित व्यवहार करना चाहिए, बोल चाल में भी, सभी चीजों में जो भी हम व्यवहार करते हैं उसमें हमें उचित अनुचित का विवेक होना चाहिए। मुझे वो पढ़ करके और बहुत आश्चर्य हुआ था, फिर लगा कि नहीं, आश्चर्य करने लायक तो अपन के लिए है, लेकिन महापुरुषों के लिए तो ऐसी प्रवृत्ति बहुत सहज ही है। कौन सी प्रवृत्ति? जब दुर्योधन से सारी गायें छीन करके गंधर्व और ले गए थे, हैं? तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुला करके कहा था कि देखो तो वो सब गायें छीन के ले गए, युधिष्ठिर को भी जो है पकड़ लिया है, जाओ तो छुड़ा करके ले आओ। तो सुनते ही साथ भीम को तो गुस्सा आ गई थी कि जिनने हमारे साथ आज तक दुर्व्यवहार किया उनके उनके लिए मैं छुड़ाने जाऊं। लेकिन युधिष्ठिर भीम की बात सुनकर के दुखी हो गए थे। हाँ, उनकी आग भीग गई थी कि इतनी नाराजी क्यों, और उनके ऐसे भाव को देख करके अर्जुन आगे आए थे और उन्होंने कहा कि भैया चिंता मत करो, मैं जाकर के अभी छुड़ा के लाता हूं। और सब छुड़ा करके ले आए थे गंधर्वों से, दुर्योधन को भी और गायों को भी। तब मालूम युधिष्ठिर ने क्या कहा था भीम से, महापुरुष जी कह सकते हैं कि भैया हम भीतर भले ही आपस में भेदभाव कर लें, लड़ लेवे, लेकिन बाहर वालों के लिए तो हम एक ही हैं, 105। भले ही हम भीतर 105 क्यों ना हो, लेकिन हम बाहर तो 105 ही हैं। ये है साधर्मी के प्रति स्नेह और साधर्मी के प्रति उचित व्यवहार। उस समय अगर देखा जाए तो सठे साठ्यम समाचरे टिट फॉर टिट, ये नीति का वाक्य है कि उनने हमारे संगे बुराव करो सो हम भी करें, तो गदा लात मारे तो अपन भी मारो, वो में अपन में कहां अंतर? नहीं, अब देखना आप, ये जो प्रक्रिया है वो यहां उससे तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनेगी, उससे संसार ही बढ़ेगा। तीर्थंकर बनना आसान नहीं है, उसके लिए इतनी सद्भावना भीतर है कि मेरा तो दूसरे का मेरे से अनुचित व्यवहार क्यों ना हो, लेकिन मैं जब व्यवहार करूंगा तो उचित व्यवहार करूंगा। कुंती के बारे में मालूम, जब सबको वनवास हो गया, अकेले कुंती हस्तिनापुर में रुक गई, विदुर के यहां पर एक दिन जाने लगी राजमहल। विदुर ने कहा कि कहां जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन से मिलने जा रही। अरे, उनने तो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करा और उनसे मिलने जा रही, तो मालूम क्या जवाब दिया? पता नहीं उनने क्या जवाब दिया होगा, पर ऐसा ही जवाब दिया होगा। उन्होंने कहा कि मैं उनका प्रेम पाने नहीं जा रही हूं, वे मेरे से शत्रुता रखें, मैं मुझे उनके प्रेम की आवश्यकता नहीं, मैं तो अपने मन के द्वेष को मिटाने जा रही हूं। मैं उनका प्रेम पाने नहीं जा रही, मैं अपने मन की कलुषता, अपने मन का द्वेष मिटाने उनके पास जा रही हूं। अपने से शत्रुता रखने वाले के प्रति भी मैं प्रेम न रखूं, इतनी गई बीती नहीं है। हां, वे मेरे से शत्रुता रखें, लेकिन मैं अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम न रखूं, इतनी गई बीती मैं नहीं। ऐसा पढ़ करके मुझे लगा। और फिर उसके बाद एक वाक्य और कहती हैं वो, कि दूसरे के मन को मैं निर्मल नहीं बना सकती तो अपने मन को कलुषित भी नहीं होने दोगे। बताइए, क्या कोई सोच सकता है हम और आप में से? ये महापुरुष ही सोच सकते हैं ऐसा, अपने प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है लेकिन मेरा साधर्मी है। बताइए, उसके प्रति मैं उचित ही व्यवहार करूं, मेरा व्यवहार उसके प्रति अनुचित नहीं होगा। और दूसरी चीज, अपने साधर्मी से कभी भी भेदभाव नहीं करना। देखो, हमेशा एकता रखना। लेकिन आज कितने भेद हैं, पंथ के भेद, जी 20 पंथ के, जी 13 पंथ के, जी तारण पंथ के, विफलाने पंथ के, ऐसे पंथ, जी श्वेतांबर, जी दिगंबर, साधर्मी हैं, लेकिन ऐसे पंथों के भेद, इतने ही नहीं जाति के भेद, जी अपन ने अपने हाथ से डेवलप कर लिए हैं, इसलिए तो कोई अब कोई कहे कि आज क्यों नहीं तीर्थंकर प्रकृति बंद थी, तो अब ऐसे लक्षणों में बंद है क्या तीर्थंकर प्रकृति? नहीं, सोचो तो अपन अपने अपने अंदर झांक के देखो कि क्या कर रहे हैं अपन, जातिगत भेद। हम इंदौर में गए, हमने पहली बार वहां सुना, हमने कहा खंडेलवाल, कासलीवाल, बाकलीवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, जैसवाल, अग्रवाल, दुनिया भर के सब। आचार्य श्री क्या कहते हैं हमेशा कि ये सब बाल हटा दो ताकि हॉल बन जाए, सब इकट्ठे बैठ सको। ये बाल तो है, बाल मतलब दीवाल, इंग्लिश में बाल बोलते दीवाल को, ये दीवाले हैं जो हमारे अंदर भेद डालने वाली हैं, इन सब को अलग कर दें तो हॉल बन जाए। फिर मैं एक कहानी पढ़ रहा था, हाथी एक बार, वो आती ना पंचतंत्री की कहानियां, हम वो भी पढ़ते रहते हैं, आप कहेंगे कि क्या क्या पढ़ते रहते हैं, वो भी पढ़ ली हमने, तो उसमें एक कहानी आई बड़ी मजे की। वो हाथी का मन हुआ कि सब लोग बुलाते थे हाथी को, जब भी कोई मिल जाता था जंगल में, अरे दादा हाथी दादा, हमारे यहां नहीं आते आप। अब हाथी को हंसी आ जाती कि जगह आ गया है ही नहीं, अब चूहा बुला दे उनको अपने दिल में तो कहां तो कैसे काम चलेगा बताओ। मगर सब उनसे डरते थे तो कहते हाथी दादा आप हमारे घर आना। एक दिन उनने सोचा कि सब जंगल के लोग हमें बुलाते हैं, चलो हो आओ, सबके थोड़ी थोड़ी देर बैठे हैं अपन। अब गए वो सबसे पहले चूहे के यहां, आवाज दी कि हम आ गए हैं, तो चूहे के पास में जो थोड़ी सी जगह थी और बिछाने के लिए क्या था उसके पास, थोड़ी सी वो खाल वाल थी जो भी, तो उसने बिछा दी स्वागत के लिए कि आओ बैठो। अब हाथी दादा उसमें कहां से बैठेंगे, आगे बढ़ गए। उसके बाद पहुंचे गिलहरी के पास, अब गिलहरी तो और छोटी, उसने भी बहुत आवभगत तो सबने की, लेकिन बैठने के लिए अपना आसन, छोटा सा आसन वो दिया, आप कैसे बैठे उस पर तो उनका एक पैर भी नहीं समाएगा। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, खरगोश के यहां पहुंचे, खरगोश ने भी यही कहा, कोई भी जानवर ऐसा नहीं था जिसके पास हाथी के बिठाने लायक जगह हो। भैया अकेले बिठाने लायक जगह से ही काम होता है, ऐसा नहीं है, हृदय में अगर जगह है तो छोटी जगह में भी सब बैठ जाते हैं। पर किसी को ये बात नहीं सूझ रही थी, सब चाहते थे कि हाथी दादा हमारे घर आए हैं तो हमारे यहां पर जितनी जगह उतने ही बिठा लेंगे हम। ये है भेदभाव सबके मन में था। शेर तक की गुफा में हाथी दादा नहीं बैठ पाए, जब सब के यहां से होके बाहर खड़े थे तो ऊपर से कौन बैठा हुआ था, मैना बैठी थी, कोयल नहीं, मैना नहीं, कोयल बैठी, उसने अपने मधुर स्वर में सारे अपने अपने घर के बाहर खड़े पक्ष जानवर सोच रहे हमारे यहां नहीं बैठ पाए, हमारे यहां नहीं बैठ पाए, तो मालूम उसने क्या कहा कि अरे तुम सब लोग अपने छोटे छोटे से घरों में उतने बड़े हाथी दादा को बिठाना चाहते हो, जरा बाहर अपने अपने आसन लेके आ जाओ, इस पूरे मैदान को अपना मानो और इसमें बिछा दो अपने अपने आसन, हाथी दादा यहां बैठ जाएंगे, अपने अपने घर में नहीं अटेंगे, हम यही चाहते हैं कि नहीं जो कुछ भी है वो हमें प्राप्त हो, बाकी दूसरे को कुछ भी प्राप्त ना हो। ये क्या है, ये भेदभाव की प्रक्रिया है, सब एक साथ मिल बैठ करके, मिल बांट करके, हिल मिल करके सारी चीजें संपन्न करें, ऐसी भावना जब मन के भीतर आवे तब जाकर के जो है, और ये स्नेह जिसको कहते हैं साधर्मी के प्रति, तब उसकी प्राप्ति होगी। इतना आसान नहीं है। एक जगह आचार्य श्री ने और लिखा कि अगर कुरल काव्य में तो लिखा ही है, कुरल काव्य में तो ये लिखा है कि जिसके मन में साधर्मी के प्रति स्नेह नहीं उमड़ता और आंख गीली नहीं होती है, तो उसकी ऐसे दो छेद तो नारियल में भी होते, ऐसा लिखा, ऐसे दो छेद तो नारियल में भी होते हैं, क्या काम के वो दो छेद जिनमें की करुणा का जल नहीं आता, स्नेह नहीं उमड़ता है साधर्मी को देख करके, ईर्ष्या ही आ जाती है दूसरे के गुणों को देख करके। आना चाहिए स्नेह, उमड़ना चाहिए, आंखों में दिख जाता है स्नेह, दिख जाता है हाँ कि है कि नहीं है, रीतापन है। माँ की तरफ देखता है बेटा दूध पीते पीते कि कैसे देख रही है, फिर बस चुपचाप फिर पीने लगता, और अगर वो थोड़ी आंख से टेढ़ी कर देवे तो दूध पीना बंद, देखने लगता कि क्या बात हो गई। सब समझते हैं इस चीज को, तो ऐसा स्नेह। और आचार्यशी लिखते हैं कि जिसके भीतर वात्सल्य नहीं है वो तो समझो कि पाषाण के समान है, और पाषाण क्या करता है, नदी की निर्मल धारा में पाषाण आ जावे तो नदी की धारा को विभक्त कर देता है। समाज में भी जिनके भीतर वात्सल्य नहीं होता वे ही समाज को विभाजित कर देते, ऐसा लिखा हुआ है। अरे अरे विजाति होने पर भी दूध अपने में पानी को मिला लेता है, और हम सजाती होकर के भी अपने साधर्मी को एक प्यार नहीं दे पाते हैं, अपने आप में मिला नहीं पाते हैं, तो हम कितने गए बीते हो गए, ऐसा उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने। और फिर उसके लिए बहुत अच्छे से आचार्य श्री तो बड़ा मजा लेकर के हम आपको आज उसी तरह सुना रहे हैं, वैसे ही वो उदाहरण कल्पना की उन्होंने इस तरह से, कैसी कल्पना, लेकिन बड़ी प्यारी कल्पना है, दूध में कैसे आसानी से पानी मिक्सअप हो जाता है, और दूध पानी को अपना मित्र मानता है लेकिन अग्नि पानी की शत्रु है, तो मित्र का शत्रु भी शत्रु है कि नहीं, जैसे कि शत्रु का मित्र भी शत्रु, इसी तरह। तो आग पर दूध रखा हुआ है, गर्म हो रहा है, और उसमें से धीरे धीरे जल का अंश कम होता जा रहा है, तो गुस्सा आ जाती है दूध को, ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने कि असल में जब गर्म किया जाता है दूध तो उसमें से पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, पानी अर्थात उसका मित्र दूध का, जैसे उस मित्र को विपत्ति में दूध देखता है तो उबलने लगता है, हाँ उफनने लगता है, ऐसा उदाहरण दिया कि उबलता भी है और उफनता भी, अभी देखता हूं इस अग्नि को मेरे मित्र को जला रही है और बाहर आकर के अग्नि के ऊपर गिर करके उसे बुझाना चाहता है, देखना आप, ऐसा उदाहरण दिया कि अपने मित्र की रक्षा के लिए उफन करके उबल करके गुस्सा प्रकट करता और बाहर आके अग्नि को बुझाना चाहता है, लेकिन उतने में ही अब देखना आप दूध से जिसका प्रेम है, मान लो जिसने जिसने रखा है उबलने के लिए उसका दूध ना गिर जाए, मतलब उसको तो प्रेम है, वो तो इंतजाम करेगा ही कि तो उतार के नीचे धर देगा और के फिर दो चार पांच छींटे पानी के डाल देगा, तो जैसे ही पानी के छींटे पड़ते हैं दूध पर, दूध कहता कि हाँ ठीक है मेरे मित्र की सुरक्षा हो गई, तो फिर से शांत हो जाता है। ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने कि ये दूध जो है वो अपने मित्र के साथ मित्रता निभाता, उस पर विपत्ति आती है तो अपने जीवन को निछावर करने तैयार हो जाता, और हम हमारे साधर्मी को विपत्ति में देख करके मुस्कुराते हैं कि अब समझ में आई, अब आओ हमारे पास में केवे मदद मांगने के लिए, हमें तुरंत जाकर के जो है उसकी उसके बिना कहे मदद, दूसरे को अपने साधर्मी को मदद मांगनी पड़े, साधर्मी की मदद के लिए तो हमेशा हमें तत्पर ही होना चाहिए, तब कहलाएगा स्नेह। कितनी बातें हो गई, साधर्मी के साथ उचित व्यवहार करना ही स्नेह का प्रतीक है, कभी भी भेदभाव नहीं करना, हमेशा एकता रखना, ये और बहुत व्यापक दृष्टिकोण, जो काम करें सब मिलजुल करके करें, अब तुम्हारे जुम्मे है सो तुम करो, देखें बनो बिगड़त कैसो है, हमें तो कही नहीं है कछु करवे की, उन्हें को कही है सो बे ही करें बे ही जाने, देखें कैसे करें। ऐसा धार्मिक कार्यों तक में, घर गृहस्थी के कामों में सब साधर्मी है, नहीं भैया अगर कहीं कोई कोई भी कार्य होता है तो उसमें सब जैसे कहते ना कि कंधे से कंधा मिला के साधर्मी के साथ खड़े होना चाहिए, और फिर आखिरी में कह रहे हैं कि साधर्मी पे विपत्ति आए तब भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म और धर्मात्मा का साथ विपत्ति में देना, यही वात्सल्य है साधर्मी के प्रति। और निस्वार्थ अब आखिरी कंडीशन है, उसमें निस्वार्थ होना चाहिए। इसीलिए गाय और बछड़े का उदाहरण दिया, माँ और बेटे का नहीं दिया। वैसे माँ और बेटे का रिश्ता भी बहुत ऊंचा है, छोटा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं दिया? उसमें थोड़ा सा मोह है, माँ और बेटे के रिश्ते में थोड़ा सा स्वार्थ है। ये मेरा बेटा है, आखिरी समय मेरी सेवा करेगा, ऐसी अपेक्षा उससे रहती ही है, कोई कितने भी करे। लेकिन गाय को अपने बछड़े से कोई अपेक्षा नहीं रहती, जब तक दूध पीता है पीता रहता, जिस दिन घास खाना शुरू कर देता उस दिन माँ को भूल जाए तो माँ भी कहती कि भूल जाओ। कभी भी माँ को ये अपेक्षा नहीं रहती कि ये मेरा बेटा मुझे घास डाल देगा, मुझे एक बाल्टी पानी भर के रख देगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए जो है धैनु वत् से वात्सल्य, ऐसी उपमा दी है जैसे कि गाय का बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रेम रहता है, ऐसी ही भावना अपने साधर्मी के प्रति होनी चाहिए। तब जाकर के हमारा जीवन तो स्वयं निर्मल होता ही है ऐसे परिणामों से, और साथ ही साथ हमारे माध्यम से प्राणी मात्र का कल्याण होता। तीर्थंकर प्रकृति ऐसी ही प्रकृति है कर्म की, जिसके माध्यम से जिसको बंधती है एक भाव में, उसी भाव में या अगले भाव में नियम से उसका कल्याण हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का इतना ही है, विदेश क्षेत्र में जो जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, मान लीजिएगा जन्म होने के बाद उन्होंने गृहस्थ में रह करके, गृहस्थी में भी तीर्थंकर प्रकृति बनती, ये ध्यान रखना, अकेले मुनि महाराज को ही बनती, ऐसा नहीं कोई ने जन्म ले लिया, जन्म लेकर के गृहस्थी में रहे 30 वर्ष तक, फिर उसके बाद केवली शुद्ध केवली, बस ये जरूर है, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर के फिर 16 कारण भावनाएं और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते विदेश क्षेत्र में, तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाती। और जब वो दीक्षा लेते हैं तब उनके दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है, उसी जीवन में तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई, तो दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और फिर निर्वाण कल्याणक, तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर भी हो जाते हैं। और कोई कोई जो है वहां पर मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, तब फिर उनको केवल ज्ञान होता है तब कल्याणक मनाया जाता, और ज्ञान मोक्ष होता तब दो कल्याणक वाले तीर्थंकर। भरत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले होते, पूर्व जीवन में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, अगले जीवन में जरूर से वो उदय में आकर के, और उस जीव का कल्याण तो हो गई, और उसके माध्यम से और जो जो उनके संपर्क में आएंगे, जो जो उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, उन सब का भी कल्याण होता। ऐसी भैया ये तीर्थंकर प्रकृति अपन ने, मैंने अपने जीवन में तीर्थंकर प्रकृति के बारे में 16 कारण भावनाएं, कोई बात नहीं, 16 कारण भावनाएं पहली बार आपको मैं ऐसी बात कह के कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, पर कह रहा हूं कि मैंने स्वयं कभी सोचा नहीं था, 20 वर्ष तो मुझे हो गए लेकिन कभी भी 16 कारण पर मैंने प्रवचन नहीं किए, ना इस तरह से कभी विचार किया। ये तो आपका कहना चाहिए, उसको पुण्य मानूंगा कि आपके पुण्य से, और अपन ने और कर्म सिद्धांत पढ़ रहे थे, उस बीच में तीर्थंकर प्रकृति की 16 कारण भावनाएं भी अपन ने पढ़ ली। अब थोड़ा सा एक दो दिन का कर्म सिद्धांत का और कार्य बाकी रहा, और अपन ने लगभग जितनी चीजें आवश्यक थी, फिर उसके बाद मैं आज ही बता दूं कि 24 और 25 दो दिन और अपन ऐसे ही बैठेंगे, फिर 26-27 को मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, फिर आने वाले स्टूडेंट्स को टाइम दूंगा, इसलिए 26-27 को नहीं बैठूंगा, 28 को फिर आपसे मिलूंगा, तो फिर मैं है कि नहीं, इसलिए आप मुझे 26 और 27 को जिद नहीं करेंगे, मैं अपने स्थान पर ही बैठ करके और जो बच्चे आने वाले हैं उनसे उनको समय दूंगा, 28 को सुबह भी उन्हीं को समय दूंगा, 28 के दोपहर में आपको समय दूंगा, आपको भी ये मान करके कि वे हमारे ही परिवार के हैं ऐसा मानकर उनके साथ करना है। फिर देखिएगा अपन ये करते हुए भी धर्म ध्यान करेंगे, हमने सबको यही कहा कि ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ सम्मान कर रहे हैं, सम्मान तो कोई भी कर देगा, वो तो हर जगह उनके सम्मान हुए होंगे, हम उनका सिर्फ सम्मान नहीं, हम उनको धर्म के रास्ते पर अपने साधर्मी होने की वजह से, क्योंकि आज युवा वर्ग एक बार घर छोड़ करके बड़ी जगह पढ़ने जाता है तो वहां ना मंदिर जा पाता है, ना धर्म पढ़ पाता है, ना रात्रि भोजन छोड़ पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसे में हम उन्हें संदेश दें कि वे जहां भी रहें, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद ही ऐसी स्थिति आती है कि बड़ी जगह पढ़ने जाना पड़ता है, माता पिता से दूर 5-5 बरस तो संस्कार खत्म हो जाते। एक बार हम उनको और ये संस्कार देंगे कि तुम जहां भी रहो, जैसे कि गांधी जी विदेश पढ़ने जा रहे थे बैरिस्ट्री पढ़ने, तब मां ने क्या सौगंध दिलाई थी कि जाओ बेटे, लेकिन वहां पर अवक्ष नहीं खाना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, गांधी जी ने सौगंध ली थी। हम अपने बच्चों को भी जब वे बाहर पढ़ने जाते हैं, बड़ी पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, हमारे घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने जाते, तो उनको हम कहें कि बेटे हफ्ते भर में एक दिन तो कम से कम दर्शन कराना, 12-12-15 किलोमीटर दूर कई बार होते हैं स्थान, तो हम उनको ये सजेस्ट करें तुम कभी भी जो है ऐसी चीजें जो अवक्ष हैं वो नहीं खाना। हमने इस उद्देश्य से ये पहली बार ही आपके यहां पर, मेरे 2-3 बरस से जो मेरा सपना था वो 28 तारीख आने वाली है, उसमें मैं कोशिश कर रहे हैं सब मिलकर के, आप सब लोग ही कर रहे हैं, शिवपुरी का ये भी सौभाग्य मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर इन सब चीजों के साथ साथ हमें करना क्या है, हमें अपना धर्म ध्यान करना, ये तो धर्म ध्यान के अवसर हैं, इस तरह मिल करके और साधर्मी के प्रति प्रेम रख करके और अपने धर्म की परंपरा को हमें और आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। आपने तो अपने जीवन में अपने माता पिता से जो पाया उसको तो पालन किए ही है, अब आपको अपने बच्चों को भी वो सब चीजें अपनी परंपरा को सौंप करके जाना है। अब वो दिन लद गए जबकि गुरुकुल हुआ करते थे, जिनमें कि अपने बच्चों को पढ़ने 12-12 बरस तक भेज देते थे, वहां से आचरण भी सीख के आते थे, ज्ञान भी। अब तो आचरण सिखाने का कोई विद्यालय कहीं भी नहीं, अब तो विद्या अध्ययन होती है और चाहे जैसा आचरण करो, लेकिन नहीं, हमें अपने बच्चों को आचरण की शिक्षा भी देना पड़ेगी और ऐसे ही उनका सम्मान करके ही देना पड़ेगी। नहीं तो कल के दिन जब वे बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते और जो अपना काम अटकता है, स्वपन जाके कहते कि अरे तुम तो जैनी हो, हमारा काम कर दो, और तुम तो शिवपुरी के आओ, और जब हम पढ़ रहे थे जब करूं नहीं कहीं इतनी किया हो, जब तो करूं हमारा ध्यान नहीं दो, जब हम बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए सब अपनों काम सटो सो हाथ पांव जोड़न लगे। इसी भावना से हम उनको कि नहीं, हम तुम्हें आज भी तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, तुम कहीं बड़ी जगह पहुंच जाओगे तब समाज का ध्यान रखना, तब तुम अपने धर्म का ध्यान रखना, उसे नहीं भुला देना, हमारा उद्देश्य ये है। हमने आज ही चूंकि वात्सल्य का प्रकरण था इसलिए हम सोचते हैं कि अपन इन सब चीजों को उसी रूप में लें, धर्म ध्यान के रूप में, और ये एक धर्म ध्यान करने जा रहे हैं, साधर्मी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करने जा रहे हैं, इसी भावना के साथ। इस भावना से हमारे जीवन में निर्मलता आती है और हमारा कल्याण होता है, ऐसा विचार करके बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तर पर वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर
नव वंदन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां शम के अविनश्वर मणिया हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम सतमना स्वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आप पर भास वेखो भानु शिव कानी है अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो न सताए वेखो भव्य और आनी है वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो दिन वाणी भारती तो जपो दिन रहन जो तेरो शरणा गए सो पावे
क्षमा सागर जी महाराज के पावन चरणों में ओम भी परम पूज्य स्वामी भव सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनंत प्राप्त है।